बखिलाफ इसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो ना तो तुम्हारी मदद कर सकते और ना खुद अपनी मदद के काबिल हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहर तुमको ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, मगर फिर वाकई वो कुछ भी नहीं देखते। करो क्या, शिर्क कैसे मिटेगा, दुनिया से बुराइयां कैसे खत्म होंगी। खुज़िल लफ़्वा मुरबिल उर्फ़िवा अरिदनिल जाहिलीन, ए नबी नरमी और दरगुजर का तरीका अख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से न उलझो। अगर कभी शैतान आपको उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं इनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर इनको छू भी जाए तो फौरन चौकन्ने हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। फिर इनको साफ नजर आने लगता है कि इनके लिए सही तरीकेकार क्या है। रहे इनके यानी शैतान के भाईपन तो वो इनको टेढ़े रास्तों में खींचे चले जाते हैं और इन्हें भटकाने में कोई कसर उठा नहीं रखते। देखिए कितना खूबसूरत तरीका यहाँ सिखा दिया। जब हमारी आवाजें सख्त होने लगती हैं, हम लोगों को काफिर और मुशरिक कहकर पुकारते हैं, वो मुशरिकों लोग नहीं सुनेंगे। आज जितनी खूबसूरत तरीके से अल्लाह के नबी को इस जो नसीहत की गई इस पे अमल करने की उम्मत मुस्लिमों को जरूरत है शायद पहले कभी नहीं थी। दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनके हक है माशाल्लाह, लेकिन उनकी आवाजें बड़ी ऊंची हैं, अंदाज बड़ा टॉन्टिंग है, ऊंची बोलते हैं, गुस्से में बोलते हैं, आवाज ऊपर चली जाती है, कानों से ऊपर टकराती है, लोग कहते हैं मैं आपकी बातें क्यों सुने। दूसरी तरफ लोग वो हैं जो सब ढीली ढाली बातें के प्यार मोहब्बत की छुरियों से जीते हैं। इस वक्त जरूरत है कि हक हो, मीठी जुबान से हो, प्यार के साथ लोगों को बताओ, क्योंकि जो किसी गुनाह में भी जुड़ा होता है ना, किसी गलत काम में होता है, उसको गलत नहीं लगता तभी तो वो करता है, इसलिए इस वक्त इसकी जरूरत है। फिर इसमें एक चीज हमने देखी, तकवा का आला तरीन दर्जा। कल एक दर्स हुआ जहां भी छोटा सा, उसमें यही दर्जे बताए थे कि कुछ लोगों को गुनाह करने से बहुत पहले पता लग जाता है कि कुछ रॉन्ग है, जैसे वो अलार्म बजने लगता है ना तो वो फिर फौरन छोड़ देते हैं। कुछ को गुनाह करने के दौरान पता चल जाता है, कुछ करने के फौरन बाद, और कुछ तो इतने बोल रहे हैं गुनाह करके कहते हैं हमने क्या गुनाह किया। तो ये बेस्ट लोग हैं कि दूर से भी शैतान ने कोई ख्याल डाला, सोचो उसके बारे में, यानी आप कुरान पढ़ रही हैं ना इधर, अब आप बैठे हैं, एकदम शैतान आपके जिन में पुरानी बातें डाल दो, घर में क्या हो रहा है, अच्छा बाहर क्या था, सुबह कैसे आई, इधर किसी के बारे में तवज्जो डलवा देगा, कोई साइन बोर्ड आपको नजर आ जाएगा, कहीं आपको कोई तस्वीर दिखेगी, बस जो ही ऐसा ख्याल आए फौरन होशियार हो जाए। तो ये तकवा की अलामत है कि मैं किधर गई, इतनी मेहनत से घर से आई और ये नजरें अब इधर उधर है, कुरान पे देखूंगी, मेरी नजरें कुरान पे जाएंगी, मेरी नजरों को भी अजर मिलेगा, कानों से सिर्फ सुनते हैं कान टकराते हैं। मैंने खुद इसका तजुर्बा किया, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान काफी हद तक याद है, इस तरह से कि अगर तिलावत चलती है तो आयतों के पेज खुलते हैं, लेकिन तरावी में अगर मैं सामने कुरान ना खोलूं तो मेरी तवज्जो इधर उधर चली जाती है, वो आयतों पर सोचना शुरू हो जाती है और पता नहीं कहाँ चली जाऊंगी, और जूं ही मैं अपने सामने कुरान पाक खोलती हूँ तो फिर मुझे कुछ नहीं भटकता, तब मैं देखती हूँ कि सामने कुरान रख के उसको देखना कितना अहम है। तो जब आप यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट लेसन होता है, अगर आप साथ साथ आयतों पे रखें, ये देखिए मैंने बुक मार्क्स रखे होते हैं कहीं, ये इस तरह से कभी पेंसिल से कुछ, मेरी ख्वाहिश होती है कि जो लफ्ज़ मैं पढ़ी मैं उसको देखूं, और अगर ये चीज मैं नहीं करूंगी ना तो मैं कभी भी फोकस नहीं हो सकूंगी। तो शैतान से बचने का तरीका क्या है कि इंसान अपने आप को बेहतरीन तरीके से उन लफ्जों के साथ जोड़ के रखे। फिर फरमाया ए नबी जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा नहीं करते तो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना मुंतखब की। इनसे कहो मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है, यानी कि मैं खुद अमल करता हूँ, दूसरों को क्या कहूँ। ये बसीरत की रोशनाइयाँ हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो इसे कबूल कर लें। क्या पता चला किसको मिलेगा, जो कबूल करेगा। और करो क्या, कुरान पढ़ने का खूबसूरत अदब सिखाया गया, वइज़ा क़ुरिया अल-क़ुरआन फ़स्तमिऊ लहू वन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुना करो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। आप देखिए अल्लाह सुब्हान तआला कह रहे हैं कि कुरान सुनने के अदब कैसे। पहली बात है कि गौर से सुनो। गौर से इंसान किस चीज को सुनता है, जिस पे अमल करना होता है। मतलब आपके शौहर आपको कुछ कह रहे हैं और आप कहते छोड़ो मैंने कौन सी माननी है, तो आप ऐसे नहीं सुनेंगे, इधर उधर साथ चौके चीजें उठा रही हैं, ये कह रही हैं, आपके कानों पे बात टकरा रही है, आपको गाड़ी में भी याद भी नहीं होगा उन्होंने क्या कहा था। गौर से कौन सी सुनते हैं, नंबर एक जिस पे अमल करना होता है, और नंबर दो जो किसी को आगे बतानी होती है। कोई कहना अच्छा ये मैसेज दे दीजिएगा, फिर हम कहते ओ अच्छा क्या कहा, मैंने तो सुना ही नहीं था, फिर कहिएगा। कुरान को मैं किस सोच से सुन रही हूँ इससे मेरे सुनने का बदल जाएगा। और यकीन कीजिए ये किताब हमारी है। हम में से किसी को कोई यहाँ जबरदस्ती नहीं लेकर आया, हम बड़ी एफर्ट करके यहाँ आए, हमने अपनी नींद को छोड़ा, हमने घरों को छोड़ा। तो ये किताब का सुनना इस तमे, एक होता समिया सुनना, इस तमिया में गौर से सुनना है, पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग से। और यहाँ ये भी बात समझ लीजिए कि कुरान का मिजाज सुनने वाला है, पढ़ने वाला नहीं है। पढ़ते हैं तो बरकत मिलती है, सुनते हैं तो हिदायत मिलती है। ये वही बात है कि अब मैं बोल रही हूँ तो आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर मेरा एक एक लफ्ज बोला लिख के कोई आपको एक बुक की शक्ल में दे दे, कभी इतना असर आपके दिल पे ना हो जो बोल का सुनने से होता है। तो कुरान चूंकि कलाम है, स्पीच है, तो स्पीच तो सुनने में मजा आता है। फिर इसके बाद अनसितु, खामोश रहो। बस जब हम जाहरी तौर पर खामोश हो जाते हैं लेकिन अंदर से कुछ ना ख्याल उभर रहे होते हैं, सोचें, प्लानिंग, आज इफ्तारी में क्या बनेगा, आज किधर जाएंगे, आज क्या करना है, आज करना है, ईद की भी तैयारी कर लो। फिर इसी तरह एक और खामोशी क्या होती है कि हम अपने सेलफोन की बेल तो बंद कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एम्बेरसमेंट भी होती है, लेकिन उसके मैसेजेस, उसकी टिक टिक और उसकी वाइब्रेशन आती रहती है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम कुरान पढ़ते वक्त खुद को एतिकाफ की सूरत में कर लें और ये इमेजिन कर लें कि ये मेरी नमाज है, तो नमाज में मैसेज आएंगे भी तो आप चेक तो कर ही नहीं सकते, यहाँ भी आएंगे चेक तो कर ही नहीं सकते। कल एक तजुर्बा करें, सब करके देखें, आप अंदर जो ही आए अपने फोन को एरोप्लेन मोड पे करते हैं, ना कोई आपको सताए ना आप सताए, फिर आप उस पारे की अब्सॉर्प्शन देखें। और घर वालों को कहकर आए कि मुझे इन 3 घंटों में कोई डिस्टर्ब ना करे, अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी है, एडमिन बाहर मौजूद है, उनका नंबर दे दें, कोई ऐसी बात होगी वहां के आपको लिख के देंगे। हमें इससे ज्यादा फर्क ना भी पड़े लेकिन आपको खुद बहुत फर्क पड़ेगा। और किताब हकीकत में ऐसी है कि जिसको हम जितनी ज्यादा तवज्जो देते हैं उतनी फायदा देती है। कुरान एक ऐसा ड्रेस नहीं है कोई खास उम्र में कोई पहनता है और बस उसके बाद खत्म होता है, हर एक के लिए है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वस्कु रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन वखीफन, ए नबी अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ और जुबान से भी और हल्के आवाज के साथ। आप इन लोगों में से ना हो जाएं जो गफलत में पड़े हुए हैं। दुआ करें अल्लाह हमारी गफलतें दूर कर दे। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकर्रुब का मुकाम रखते हैं वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर इसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और इसकी तस्बीह करते हैं और इसके आगे झुके रहते हैं। ये है कुरान पाक की तरतीब के अतबार से पहली आयत सजदा। आयत सजदा का हुक्म थोड़ा सा यही समझ लीजिए, फर्ज नहीं है, सुन्नत है, सवाब का अमल है, नहीं करते तो गुनाह नहीं होता। और इस पे अल्लाह के नबी ने सिखाया भी, हमारे पास कुछ बुक मार्क्स भी हैं जिन पे आयत सजदा मौजूद है। सजद वजहिया लिल्लज़ी खलकहु व सव्वरहु व शक्का समहु व बसरहु बिहौलिही व कुव्वतिही, जब भी कुदरतिही भी आता है। क्या पता चला कि हम उस वक्त सजदा करते हैं अल्लाह को ये दिखाने के लिए कि हम इस किताब को इस सोच के साथ पढ़ रहे हैं कि हम इस पर अमल करेंगे। अब आम हालात में आप खुद पढ़ रहे हैं, फौरन कुरान बंद कीजिए, सजदा कर लें। बात तो कहते हैं इसके लिए वजू की भी शर्त नहीं है, क़िबला रुख होने की भी शर्त नहीं है, क्योंकि ये नमाज के सर से फर्क है। इसी तरह पीरियड्स में तो भी कर सकते हैं। अब सब हम यहाँ सुन रहे हैं, क्या करें? अगर हम यहाँ एक पॉज लेंगे हमारे 5-10 मिनट लगने का डर है, आप बाद में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नहीं भी करेंगे तो गुनाह नहीं, कहीं भी हल्का सा झुक भी जाते हैं तो अल्लाह के हुक्म से किफायत होती है। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अगली सूरत नहीं बल्कि 2 सूरतें, इनका मिजाज इस सूरत से बहुत फर्क है। बल्कि अगर आप में से जो साथी मेरे साथ हर साल कुरान का दौर करते हैं या क्लासेस में, उनको ये बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सूरत अनफाल और सूरत तौबा पढ़ने से पहले का आपका ईमान और अनफाल और तौबा पढ़ने के बाद आपका ईमान, 2 मुख्तलिफ ईमान होते हैं। ये क्लाइमेक्स ऑफ दी कुरान है, इसलिए यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री बताना लाजिम है। समझ सकें तो समझ लें, नोट कर सकें तो नोट कर लें, कुछ ना कर सकें तो ये नियत कर लीजिए कि इसके बाद कुरान को इतनी डिटेल से पढ़ना है कि मुझे ये सारी बातें समझ आए। 4 सूरतें हैं कुरान की, सूरत अल-अनाम, आराफ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2 पढ़ चुके। नबी सल्लम पर हिजरत से पहले नाजिल हुई थी, मक्की सूरतें तो हिजरत से पहले हुई। इसी तरह अनफाल और तौबा, ये 2 सूरतें जो हमारे पास हैं ये हिजरत के बाद नाजिल हुई, ये जोड़े की सूरत में सूरतें हैं। इन 4 सूरतों में खिताब बनी इस्माइल से है, यानी उम्मत मुस्लिमा से, नबी सल्लम की उम्मत से। आपने पीछे भी नोट किया होगा कि इन सूरतों में बहुत कम दूसरी कौमों का इस तरह से जिक्र हुआ कि तुम ये करो वो करो। सूरत अनफाल जो है तरतीब के एतबार से सूरत बकरा और सूरत मोहम्मद के बाद नाजिल हुई, पूरी सूरत एक ही खुतबे में नाजिल हुई। इंशाल्लाह आज हम भी ये सादत हासिल करेंगे कि आज ये पूरी सूरत एक स्ट्रेच में पढ़ेंगे, और मेरा ड्रीम है कि पूरी पूरी सूरत एक दिन पढ़े, क्योंकि सूरत का मिजाज होता है। जैसे आप कोई घर जाते हैं, किसी जगह कोई फंक्शन है, ए टू सी पूरा एक मिजाज होता है, फिर बात समझ आती है। तो ये पूरी सूरत जो है वो एक है। गज़वे बदर के बाद के हालात इसमें हैं, माले गनीमत के साथ क्या किया जाए, उस मौके पे ये सवाल उठा था, इसलिए ये सूरत नाजिल हुई। अब यहां से चूंकि नबी सल्लम की जंगों का किस्सा है, सूरह अनफाल में आप गज़वे बदर के हालात पढ़ेंगे, और इसका मेन थीम क्या है कि गज़वे बदर की कामयाबी को कैसे हैंडल करो। जैसे पीछे सूरत आले इमरान में हम सीख चुके कि गज़वे ओहद की शिकस्त को कैसे हैंडल करना, नबी सल्लम की जंगें ये क्या हालात है। आज हमारे बच्चे बहुत एम्बेरसमेंट फील करते हैं जब दूसरे लोग उनको कहते हैं कि आपके प्रॉफिट ने तो बहुत सारी जंगें की, दिस एंड दैट। तो आइए जरा इसको भी समझते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली हम सूरत अल अराफ में पढ़ चुके कि हर कौम जिसने ज्यादती की, बात ना मानी, अल्लाह ताला ने नबी के जरिए उनको वार्निंग्स भेजी, जब उसके बाद ना माने तो अजाब आ गया। कौम नूह पे डूबने का अजाब आ गया, कौम लूत पे पत्थर बरसाए गए, इस तरह कौम सवाले जो थी वो एक जलजले से मारी गई, और इसी तरह सोन पूरी की पूरी कौमें एक ही लम्हे में खत्म कर दी गई। वाय, क्योंकि जो लोग इस दुनिया में रहते हुए अल्लाह और उसके नबी की बात ना मारे, उन माने, उनको जीने का हक नहीं है। अब यही असल अगर नबी सल्लम के साथ होता, तो जब अल्लाह के नबी ने दावत दी तो मक्का वालों ने अल्लाह के नबी को नहीं माना, 13 साल का इंतजार कर चुके। अब होना क्या था, कहा जाता कि ए नबी अबू बकर को और ये 100-200 लोगों को लेकर आप मदीना चले जाएं। जूं ही अल्लाह के नबी मक्का से बाहर आते, आसमान से एक अजाब आता, सब मक्का पे खत्म हो जाता। असूल तो यही था, अगर पिछली कौमों को देखें कि सारे दुश्मनों को एक साथ मार दिया जाता, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की रहमत की वजह से ऐसा नहीं किया। नहीं किया, पहली बात है कि आप आखिरी नबी थे। अगर आपके सारे के सारे दुश्मन आपके इनकार पे मार दिए जाते तो आगे उनके ईमान लाने की गुंजाइश ना होती और दीन वहीं रुक जाता। दूसरी बात है कि पहले नबियों पर ईमान लाने वाले चंद थे, इक्का दुक्का, 2, 3, 4, 6, 10, जबकि नबी सल्लम पर ईमान लाने वाले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे थे। तीसरी बात है कि अल्लाह ताला इसी कौम जिसने अल्लाह के नबी का इनकार किया, उनकी नस्ल में से बाद में इस्लाम लाना चाह रहे थे। जैसे आप देखते हैं कि नबी सल्लम जब ताइफ गए तो आपने वहां बहुत तकलीफ सही, हत्ता के फरिश्ते ने आके ऑफर भी दे दी कि अल्लाह के नबी आप चाहें तो इस पहाड़ को, मैं दोनों पहाड़ों को मिलाऊं और ये सब पिस के खत्म हो जाए। तो आपने कहा नहीं, रहने दो, शायद इनकी नस्ल से अल्लाह कोई ऐसा शख्स उठा ले कि जो इस्लाम है। और यही हुआ, अल्लाह के नबी के सब्र का फल आज मैंने और आपने पाया। सिंध को फतह करने वाला बच्चा मोहम्मद बिन कासिम, ये ताइफ से उठे थे। ये अल्लाह के नबी का सब्र था कि आज मैं और आप एक आजाद सिंध की सूरत में देखते हैं। फिर दूसरी एक और चीज समझ लें जिससे आपको थोड़ी सी और भी बातें समझ आएंगी, और वो क्या है, हर नबी को अल्लाह ने भेजा। हम सिर्फ 3 नबियों का तकाबुल करते हैं जो क्लोज के हैं और जिनके नाम पे आज भी कौमें मौजूद हैं। हजरत मूसा, अल्लाह ताला ने उनको भेजा। हमने पीछे अल-अराफ में बड़ी डिटेल से पढ़ा कि उनके 2 मिशन थे, बनी इसराइल को फिरौन के चुंगल से आजाद कराना, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डन, हो गया। दूसरा उनका इश्क के बनी इसराइल को मुनज्जम करके तौरात की रोशनी में इस तरह से किया जाए कि उनके जरिए से बैतुल-मुक़द्दस को फतह किया जाए, ये नहीं हो सका। वजह क्या है, क्योंकि हजरत मूसा को अच्छे साथी नहीं मिले। दुख की बात तो है, लेकिन इट्स ट्रू, इट्स रियलिटी कि मूसा की जिंदगी में इस्लाम को नाफिज करने का मिशन पूरा नहीं हो सका क्योंकि उनको अच्छे साथी नहीं मिले। सेम यही बात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुई। उनके साथ तो लोगों ने हद कर दी, कभी बेचारों की उम्र मुबारक 30 के करीब पहुंची कि उनको सूली पे चढ़ाने की कोशिशें कर दी, वो भी चले गए, ना उनका पूरा हुआ ना इनका हुआ। आगे बात आती है नबी सल्लम की, अल्लाह ने वही काम जो मूसा के दौर में ना पूरा हुआ, ईसा के ना पूरा हुआ, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए पूरा किया। और आपके जरिए पूरा होने की 2 बुनियादी वजूहात है जो आपको इन दोनों सूरतों में दिखेंगी। ये जो मैं हेडिंग करी हूँ ना, ये सब सूरत अनफाल और तौबा दोनों के अंदर फिट होंगी। पहली वजह क्या थी कि अल्लाह के नबी को साथी अच्छे मिले। आपके साथी जान निसार थे, लेने वाले नहीं देने वाले थे, उनको अल्लाह पे नजरें लगानी थी, बंदों पे नहीं लगानी। और दूसरा, जिसको मैं कह सकती हूँ कि गॉड ऑफ ऑनर देने को दिल करता है अल्लाह के नबी के इस अमल पे, कि आपने उनकी तरबियत बड़ी खूबसूरत की, आपने अपने सहाबा की ऐसी प्यारी तरबियत की कि जिसकी वजह से दीन फैला। ये बात भी आपको समझ आ गई। थोड़ा सा और अपने ऊपर सब्र कीजिए, जब्त कीजिए। एक होता है दीन की तबलीग, आप तबलीग करते हैं, उठते हैं उसको बताते हैं, उसको बताते हैं, मैं उठती हूँ उसको बताती हूँ, उधर दर्स, उधर दर्स, घरों में जाके दरवाजे खटकाते हैं, आप कहते हैं भाइयों नमाज पढ़ लो, वो कहते हैं अच्छा, कोई खुश होता है, कोई नाराज होता है। एक है तबलीग नबियों ने की, इससे अगला मरहला दीन को निफाज का, दीन को एस्टेब्लिश करने का होता है, निफाज दीन कह लीजिए या दीन को लागू करना, इंप्लीमेंट करना। ये ऐसी है जैसे आप पाकिस्तान की मिसाल ले लेते हैं, क्योंकि अपना मुल्क है तो मिसाल देनी अच्छी लगती है। आप पाकिस्तान के अंदर तब करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हो रही है अभी भी बहुत, क्या नहीं अभी तक हो सका 60 साल में, दीन नाफिज नहीं हो सका, इस्लामिक लॉज एंड रूल्स नहीं आ सके। दीन की तबलीग और निफाज इस्लाम के बीच में दो चीजें लाजिम है, नंबर एक कुर्बानी और नंबर दो हिजरत। जब लोग तबलीग करें, जैसे कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत हजारों लाखों लोग आज दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन दीन नाफिज क्यों नहीं हो रहा कि बीच में कुर्बानियां और हिजरतों की जरूरत है, और हिजरत और कुर्बानी के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड ग्रो ही तैयार होता है। ये दोनों सूरतें आपको बड़े खूबसूरत तरीके से बताएंगी कि कैसे करेक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए, टीम को बिल्डअप कैसे करना है, लोगों के अंदर वो मिशनरी जील कैसे पैदा की है कि वो अल्लाह के दीन के लिए दिन को निकलें, रातों को निकलें, बच्चों को लेकर निकलें, और उनको फिक्र एक बात की है कि किसी तरह से हमसे अल्लाह ताला कोई काम ले। याद रखें कि बराह रास्त छलांग लगाने से कभी कामयाबी नहीं होती। आज हमें भी तबलीग और इस्लाम के निफाज के बीच में तरबियत, कुर्बानी और हिजरत के मरहलों से गुजरना पड़ेगा। आज इस उम्मत का जो दौर इस वक्त चल रहा है, जिसको मैं और आप गुजार रहे हैं, तो आप देखिए कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी और हिजरतें और इसी तरह से तरबियत के सफर शुरू हो चुके हैं। अब सवाल पैदा होता है कि सूरत नाजिल कब हुई? गजवे बदर चूंकि पहली जंग थी, जब जंग में फतह हासिल हो गई, अब जब जंग में फतह हासिल हुई तो दुश्मनों से बहुत सारा माल मिला, दुश्मन माल छोड़ के हमेशा भागते थे। इस्लाम से पहले तरीकेकार क्या था कि इधर दुश्मन से लड़ाई खत्म, आपस में लड़ाई शुरू, दुश्मन तो भाग जाता और सारे लड़ने वाले खुद आपस में, कहते हैं ना, छीना छपटी में पड़ जाते, जिसकी लाठी उसका भैंस, जो कबीले मजबूत होते थे वो और ले लेते थे, दूसरे दूसरी लेते थे। इस्लाम ने इस रस्म को तोड़ा। सहाबा चूंकि हर काम अल्लाह के नबी की गाइडलाइन में करते थे, अपनी मर्जी से खुद सरी से कोई काम नहीं करते थे, लिहाजा जब गजवे बदर में माले गनीमत सामने आया तो सवाल पैदा हुआ कि इसका क्या किया जाए, तो उसी सवाल से ये सूरत शुरू होती है।